लगियो और बहनों एक भाई जो होशियारपुर में रहते हैं शायद वहीं से है, नाम वगैरह दिया है, वो सब तो मैं नहीं लेना चाहता हूँ। और काफ़ी प्रश्न भी उन्होंने पूछे हैं, उसको भी मैं छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन उसमें जो तात्पर्य है वो तो ये है कि एक पहले तो पंजाब तो एक ही था, पंजाब के थोड़े टुकड़े थे, तो एक आदमी एक जगह पे व्यापार करेगा और दूसरी जगह पे उसकी ज़मीन होगी, उसके मकान होंगे। तो ये भाई के पूर्वी पंजाब में मकान थे आज है, और पश्चिमी पंजाब में कुछ तजारत करते थे, वहाँ से पीछे उनको भागना पड़ा। जैसे बहुत हजारों भागे ऐसे इनको भागना पड़ा। तो उनको ऐसा था कि मैं जाता हूँ पूर्वी पंजाब में तो मेरा मकान जिधर है वहाँ जाकर मैं बेच जाऊँगा। तो वहाँ जाते हैं तो उस मकान में कोई अमलदार रहते हैं, तो उसको लगा कि वहाँ से तो उसको जाना चाहिए, लेकिन उनको तो दो कमरा ही मिला अपने ही घर में, और बाकी तो मकान तो कुछ बड़ा है ऐसा लगता है, तो बाकी में तो वो अमलदार रहते हैं आज भी ऐसा लगता है, क्योंकि तो आज मेरे हाथ में खत आया है। तो वो पूछते हैं कि क्या ये ठीक है कि वो मकान मुझको मिलना चाहिए, अगर मिलना चाहिए और पीछे वो नहीं देते हैं तो हुकूमत ने उसको मदद देनी चाहिए कि नहीं, कि उनको कोर्ट दरबार जाना चाहिए। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि उनको मकान मिलना ही चाहिए, और उसमें कोर्ट दरबार में क्यों उसको जाना चाहिए हुकूमत, और पीछे अगर अमलदार है तो हुकूमत का उस पर हक भी पड़ा है, अधिकार है, तो उसको कोर्ट में जाने की तकलीफ में पड़ना ही नहीं चाहिए, ये तो मैं कहूँगा। ये तो उसका उत्तर तो मैंने ले लिया, लेकिन मैंने तो कह लिया कि रेफ्यूजी बने हैं जो दुखी लोग, तो कोई चाहे वहाँ कब्जा ले लेते हैं और चले जाते हैं, और किसी जगह पे तो ताले कुंजी लगे हैं तो उसको तोड़ डालते हैं और वहाँ बेच जाते हैं। तो जैसे वो अमलदार का किसी को तो वहाँ तो किराए से रहते हैं वो सब ठीक है, लेकिन जब मालिक आ जाता है तो बच्चे वहाँ कैसे रह सकते हैं, और अगर रहना भी है तो मालिक के साथ कुछ मशवरा करके उसमें से एक हिस्सा रखें, लेकिन बड़ी चीज़ वो रख लें और मालिक वो अभ्यागत बन जाए, ये तो कोई अच्छी बात नहीं लगती है। लेकिन जब जब जो दुखी लोग हैं वो तो किसी के उसमें उनका कोई हक नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि उनको मजबूरन अपने तिजारत से अपने घर में से निकलना पड़ा, इसलिए वो समझते हैं कि किसी के घर में हम बेच जाएँ, और अभी वो मुसलमान, कभी मुसलमान का घर हो गया तो ख़त्म हुआ, तब तो उनका हक हो गया। ये एक हमारे लिए बड़ी बुरी चीज़ है, ऐसा मुझको तो बिल्कुल यकीन है। और इससे कुछ हम अपना या तो हिंदुस्तान का तो भला नहीं कर सकते हैं, और मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि वो अपना भी भला कभी नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंसान चोरी से अपना भला करे, लूट से, कोई जलाने से अपना भला कर सकता है, तो कहो कि वो ऐसे जो दुखी है वो अपना भला कर सकता है, वो हो नहीं सकता है, सुन सकते हैं। लेकिन इससे भी ज़्यादा बात तो ये है कि इस तरह से अगर हमारा मामला चले कि पाकिस्तान में ऐसा ही बन जाए कि कोई सिवाय मुसलमान के रह न सके, लेकिन आज मेरे पास तो हमेशा कुछ न कुछ आ जाता है, तो यही कहते हैं कि वो मीठी मीठी जबान कुछ कहें, इससे आपको धोखे भी नहीं पड़ना चाहिए, बाकी वहाँ तो कोई आराम से रह नहीं सकता है अगर वो मुसलमान नहीं है, तो आखिर में मुसलमान ही रह गए तो आपस में लड़ाई करेंगे। इसलिए मैं तो कहूँगा कि वो वहाँ अगर चलता है इस तरह से तो अच्छा नहीं है, यहाँ चलता है तो भी अच्छा नहीं है, और यहाँ अगर चलता है तो मेरी निगाह में और भी अच्छा नहीं है। क्यों? कि हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं है कि ये हिंदुस्तान है वो बिल्कुल हिंदू का ही है या तो किसी एक कौम का है। हिंदुस्तान और सब जो हिंदुस्तान में पैदा हुए और अपने को हिंदुस्तान के मानते हैं उनका हिंदुस्तान है, ऐसा अगर था और है आज भी तो पीछे हमारे पास कोई केस नहीं है। पाकिस्तान के लिए ऐसा कहो कि बहुत वर्षों से ईसाई कहते आई कि नहीं हमको तो मुसलमानों के लिए एक जगह ही होनी चाहिए, तो एक जगह मुसलमानों के लिए होनी चाहिए, तो उसका मतलब है कि दूसरे रहें या न रहें। बाद में जब ये हो गया कि अच्छा वो तो 15 अगस्त आ गई, ख्वाब में शायद नहीं था लेकिन हो गया तो पीछे ऐसा दिन में हुआ कि नहीं अभी तो हमारे तो सबको रखना ही चाहिए, तो वो आवाज़ निकली। मुझको बड़ी प्रिय लगी कि ये है तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो होता उसका अमल नहीं होता है, ये चूमने लायक बात है। तो ऐसा अगर हम दोनों करते रहें कि अच्छा वो उन्होंने ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, यहाँ हिंदू है समान ले, सिख है समान ले, तो उसमें दोनों का संहार है, नाश है। दूसरी कोई चीज़ मैं तो पाता नहीं हूँ, ऐसा मैंने आपसे कह लिया है। अभी एक भाई है वो कहते हैं कि मैं तो वो लाहौर अभी तो लाहौर में नहीं है लेकिन वो बात लाहौर की है, तो कहते हैं कि मुझको तो वहाँ से निकलना पड़ा, मैं कोई निकलना चाहता था ऐसा नहीं लेकिन मैं लाहौर से निकला और पीछे तो यहाँ आ गया कहीं भी वो पश्चिमी पंजाब को छोड़कर। लेकिन जब तुमने ये कहा कि इस तरह से वहाँ जाना है तो जा सकते हैं, इसलिए मैं तो वहाँ चला गया और फिर से वहाँ जाकर देखता हूँ। मेरी ज़मीन पर मेरे मकान पर लेकिन कुछ होता ही नहीं है और हो नहीं सका, और पीछे मुझको तो लंबी चौड़ी बातें सुना दी लेकिन मेरा जो था वो मुझको नहीं मिल सकता है। ऐसी हालत में कैसे कहते हैं कि वहाँ लोग जा सकते हैं? तो मैंने उसका जवाब तो ले लिया लेकिन ये बहुत लिखते हैं तो मुझको कुछ कहना ही चाहिए ना। तो मैं तो ये कहूँगा कि वो तो करते हैं, मैंने तो नहीं कहा है कि जब मैंने कहा उससे सब लोग वहाँ चले जा सकते हैं, मैंने साफ साफ कहा है कि जब वो मौका आ जाएगा, यहाँ तो मैंने तैयारी की बात की है, तो लोगों को जो जिसका दिल है वो तैयार रहे। उसके साथ तो जो मुसलमान भाइयों ने कहा उनको जाना है और पीछे ज़रूरत होगी तो मैं भी चला जाऊँगा, लेकिन आज वो है ही, अभी तो वो बात ही बात है। मैंने इतना कहा है को वो बात ही बात रहने वाली चीज़ नहीं, आखिर में तो उन लोगों को कह देना है कि अभी हम हार गए, या तो हमने ठीक नहीं कहा था या तो उन लोगों को ये काम करना ही है। हुकूमत के नाम से वो कहते हैं कि हुकूमत ने कह दिया है कहा ये जा सकते हैं, तो वो कहते हैं कि ये कहना लिखे लेकिन काम तो उससे उल्टा ही होता है, तो किस तरह से और कब लोग सब जो यहाँ आकर पड़ गए हैं उनको वहाँ जाना है? ठीक पूछ रहे हैं, पूछने का तो उनको अधिकार है, मैं तो इतना ही कहूँगा कि और क्योंकि वो लिखते हैं इतना लंबा इसलिए एक ही चीज़ से वो मैंने दोहराने का समझा के अच्छा है, एक भली बात है और पीछे साफ साफ बात जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए, इसलिए मैं दोहराता हूँ कि इस तरह से किसी को जाने की बात नहीं है। क्योंकि मेरे पास दूसरे भी आते हैं और कहते हैं लिखते हैं अभी हम भी तैयार हैं, तो वो सबको मैं जवाब दे देना चाहता हूँ कि जब तक मैं न कहूँ कि अभी फलानी तारीख को तो आपको जाना ही है, उसके पहले किसी को वहाँ जाने की मैं तो बात नहीं कर सकूँगा, तब तक तो यहाँ पड़ा रहना है। मेरी तो ऐसी उम्मीद थी नहीं कि इतनी शीघ्रता से वो ख्याल भी किसी के दिल में आ सकता है, लेकिन आया। वो मुस्लिम भाई कहते हैं तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है, और अगर वो कामयाब होता है तो मैं समझता हूँ कि हमारी फिजा जो आज बिगड़ गई है उसको दुरुस्त होने में हमको बड़ी मदद मिलने वाली है, इसलिए मैं तो जितनी कोशिश हो सकती है इतनी करता हूँ। लेकिन ऐसे इस भाई के जैसे जो दूसरे पड़े हैं उनसे मैं इतना तो कह लूँगा कि आपको खामोश तो रहना ही होगा, अभी तो कुछ हो नहीं गया है, तजवीज़ चल रही है, जब ये होने वाला है तब तो मैं सबको ऐलान कर दूँगा। वो कोई ऐसा नहीं होगा कि चलो खुफिया तौर से वहाँ चली गई, तब तो वहां से मेरी तो ऐसी उम्मीद है कि तो वो पाकिस्तान गाड़ी भेज दे और उसमें कहें कि इतने भाई 5,000 तो कहा है मुझको, तो 5,000 वहाँ जाते हैं, तो वो जाते हैं तो वो तो शोर से जाएंगे, हक से जाएंगे, और वो ऐसे जाएंगे कि जिसको जब उनको भी बुलाते हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो पीछे वो चीज़ नहीं हो सकती, इसमें मेरे दिल में कोई शक नहीं है। अभी एक तीसरी चीज़ है और यहाँ 15 मिनट भी है, थोड़ी मिनट तो पड़ी है, ये है पूर्व अफ्रीका की बात। दक्षिण अफ्रीका के लिए तो मैंने कहा, लेकिन कोई कई वर्षों से ये आजकल की बात नहीं है, पूर्व अफ्रीका का आपको याद रखना चाहिए कि वहाँ तो एक नैरोबी करके मुल्क है, वो उसी में वो अच्छा है, जैसे यहाँ शिमला है और पीछे मैदान है, तो वहाँ तो बड़ी गर्मी रहती है, यहाँ तो 4 महीने 5 महीने तो अच्छा रहता है, लेकिन बाकी नीचे जाओ तो और भी गर्मी रहती है, तो लोग पीछे ठंडक चाहिए तो शिमला चले जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, ऐसे बहुत जगह पड़ी है। हिंदुस्तान तो बड़ा मुल्क है, ईस्ट अफ्रीका तो वो तो छोटा है, उसमें भी पीछे मुंबासा आया, तो वहाँ उन लोगों के लिए नैरोबी भी बन गया। तो नैरोबी बनाने में तो सिख थे, सिख तो कोई देशे देशे हिट हो गए, बड़ी काबिल कौम है और बहुत काम करने वाले हैं, तगड़े हैं, तो बड़ी जहमत उठाकर उन्होंने वहाँ तो रेल तो बना ली। अभी रेल तो बनाई उसने, लेकिन खूबी ये है कि वहाँ नैरोबी में वो जा नहीं सकते, चाहे जाए तो मजदूरी करने के लिए जा सकते हैं, लेकिन वहाँ रहने के लिए, वहाँ तिजारत करने के लिए नहीं जा सकते, वो तो नैरोबी की बात हुई। पीछे वो तो जब आदमी बिगड़ता है तो स्वभाव से ऐसा हो जाता है कि वो एक चीज़ में बिगड़ता ऐसा नहीं है, तो पीछे सब चीज़ में बिगड़ जाता है। तो उन लोगों को पीछे ऐसा हुआ कि चलो ने अभी तो सब हिंदी है उसको ऐसे हटा दें, तो पीछे उन्होंने इमिग्रेशन बिल बनाया, जैसे दक्षिण अफ्रीका में बन गया उसी पे है। तो उसमें जो हिंदुस्तानी के हक हैं वो हक को बहुत छीन लेने की कोशिश है, तो वो बिल अभी बन तो नहीं गया, वो लेजिस्लेटिव असेंबली कहो के काउंसिल वहाँ तो गया, लेकिन आखिर वो हो नहीं गया है। तो वो बेचारे कुछ उम्मीद तो रखते हैं, तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल पर भेज दिया, क्योंकि वो फॉरेन मिनिस्टर हैं, बाहर की जितनी चीज़ है उस बारे में उनके हाथ में रखा है, और तो चीफ मिनिस्टर तो है, हमारे बड़े वजीर हैं, तो उनको उन्होंने टाल दिया और उसकी कॉपी मुझको दी है कि इस बारे में कुछ करो, क्योंकि मैं तो अफ्रीका में रहा इसलिए उनको हक है कहने का, लेकिन मुझको तो इतना ही कहना है, तो वो चीज़ पीछे चली जाएगी वहाँ भी, कि उसमें कोई मुझ मेरे लिए में शक नहीं। वो कहते हैं कि अब तो हिंदुस्तान तो आज़ाद बन गया, तो आज़ाद हिंदुस्तान के लिए ऐसा ही होगा क्या? और वो मुंबासा है, वो ईस्ट अफ्रीका जो पड़ा है, तो वो तो ब्रिटिश है, तो क्या ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका में जो जो हिंदी गए हैं उसके ये हाल होने वाले हैं कि वहाँ जाना उसमें भी ऐसा ही गोलमाल हो जाए और पीछे अपना काम को रोक लें। और वहाँ आपको समझना चाहिए कि बड़े ताजी लोग हमारे पड़े हैं, तो उसमें तो काफ़ी मुसलमान हैं, खोजा मुसलमान उसमें हैं, दूसरे मुसलमान भी पड़े हैं और हिंदू भी काफ़ी पड़े हैं, हर जगह से गए हैं, और उनमें से काफ़ियों ने पैसे भी इकट्ठे किए हैं, तो कोई लूट करके नहीं किए, चोरी करके नहीं किए, वहाँ जो हबशी लोग हैं उनके साथ तिजारत करके किए हैं। और ऐसा बना है कि जब वहाँ अंग्रेज नहीं गए थे और यूरोप के भी बहुत कम गए होंगे, गए थे तो उसके पहले हमारे लोग चले गए और उन्होंने तो बड़ी हवेलियाँ वहाँ बनाई, बनाने के लायक थी, वो चीज़ जानते थे, और वो जहाज भी हमारे थे उस ज़माने में, तो ये तो हम गिर गए, इसलिए हमारे जहाज चले गए, जहाज सब पीछे, तो वो जब परदेशी हुकूमत में आ जाते हैं तो ये सब चीज़ बन जाती है, तो वहाँ वो जाते थे और वो वहाँ थे, उसमें वो अंग्रेज़ भी चले गए, यूरोपियन भी चले गए, उसका तो लंबा इतिहास है, उसमें कैसे जा सकता हूँ। लेकिन उन पर तो यह हाल होने ही नहीं चाहिए। अगर हाँ वो भी लुटेरू रहते तो यही करते थे, वो तो अंग्रेज़ को हटा सकते थे, लेकिन वो तो लुटेरू थे नहीं। उनका तो काम ही ऐसा था कि उनके साथ मिलजुल कर रहना और उनके साथ तिजारत करना। सब ने कोई शुद्ध कोली कमाई ऐसा में रखने का दावा नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी को ज़बरदस्ती से कुछ नहीं दिया। इस तरह से हिंदू रहते थे, मुसलमान भी यहाँ से गए। वहाँ तो वो जो हबशी कहो उसको, अरब के नाम तो वो कहो, वो तो वहाँ रहते ही थे, लेकिन मुसलमान भी गए। लेकिन वो मुसलमान गए इसलिए उनको बहुत हक मिल गया और हिंदू को कम, ऐसा तो था नहीं। अब भी वो सब चीज़ तो आ गई है, तो वो लिखते हैं कि ये किसी न किसी तरह से इसको रोकना चाहिए, अगर न रोके तो पीछे हमको बड़ा नुकसान होता है। मैं इतना ही कहूँगा कि वो रुक जाना चाहिए, रोकना चाहिए, ये सब तो मुझको अच्छा तो लगता है कि ना, लेकिन हमारे पास वो ताकत आज नहीं आ गई है। और अभी हम ऐसे बिगड़ गए हैं कि वो जो ताकत आ गई है उसको भी खोने की कोशिश करते हैं। एक दूसरों से लड़ना, एक दूसरों को काटना और एक दूसरों को दुश्मन बना लेना। तो जब हम यहाँ आपस में दुश्मन बने और अपनी शक्ति को काटें, तो वहाँ हम किस तरह से अपनी शक्ति चला सकते हैं? नौका शक्ति तो है ही, वो चला कर तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो क्या सारी दुनिया के साथ लड़ेंगे? और लड़ें तो बेहुकवार होने वाले। हमारे पास एक ही शक्ति पड़ी है, नैतिक। नैतिक बल से हम सारी दुनिया में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अगर वो अच्छी चीज़ है। नैतिक चीज़ नैतिक बल से मिल सकती है, जो उसके विरोधी है, राक्षसी चीज़ है, वो दैवी बल से कैसे वो राक्षसी बल अगर लगावे तो आपस में लड़ना है, उसके सामने तो दैवी बल चढ़ सकता है। तो हम तो ऐसे बल से ही कुछ काम कर सकते हैं। तो मेरी तो उम्मीद है कि वहाँ जो लोगों के हाथ में शासन पड़ा है, हुकूमत पड़ी है, वो लोग समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान को आज दुश्मन नहीं बनाना चाहिए। वो आज़ाद हिंदुस्तान है। और यहाँ से मुझे पता है कि जवाहरलाल जी तो जो कुछ भी हो सकता है वो करने वाले हैं।